आत्मिक भाइयों और बहनों, आपका इस आध्यात्मिक परिवेश में हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सृष्टि एक रंगमंच है, जहां प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का अद्भुत नाटक चल रहा है। वास्तव में धरती पर जब से हम आए हैं, तब से हमारे अनेक साथी सहयोगी बने हैं। अनंत काल से प्राप्त हो रही इनकी सेवाओं के हम ऋणी हैं। देखा जाए तो इनकी अतिशय सेवाओं की गणना भी नहीं की जा सकती, परंतु इतना उपकृत होकर भी मानव इनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहा। उसने इन सभी का बलपूर्वक दोहन किया है। यही नहीं, आभार की बजाय उसने अनेक प्रकार के अत्याचार भी किए हैं। परिणामतः वर्तमान हालत में मानव अपना सुख, शांति, आनंद सब गवा चुका है। आखिर इनकी पुकार क्या है सुने, इनकी वर्तमान कहानी खुद उनकी ही जुबानी।
तुमने ही मुझे मातृभूमि, रत्न गर्भा, धरती माता जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। तुम सबकी जन्मदात्री, जीवनदायिनी मैं ही हूँ। मैं अनादिकाल से निस्वार्थ भाव से तुम्हें शरीर निर्माण कर देती रही हूँ। फिर नाना प्रकार के पदार्थों से इस शरीर की पालना करती रही हूँ। और तुमने विकारों के वशीभूत हो माँ के सुखदायी स्वरूप को तहस नहस कर डाला है। परिणाम स्वरूप भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसे भयानक आघात तुम्हें भयभीत किए रहते हैं। मातृवत्सला, मैं तुम्हारी परिस्थितियों से बहुत दुखी हूँ। पुराणों, इतिहासों में मेरे सौंदर्य और समृद्धि की तुमने कितनी महिमा गाई है। जब धरा पर स्वर्ग था तो मैं सर्व सुख सुविधाओं से भरपूर थी। हरियाली, खुशहाली से सदा ही लदी रहती थी। कवियों ने मेरे गुणगान में कविताएं लिखी, चित्रकारों ने खूबसूरत चित्रण किए हैं। मैं मणिमाणिक्य, सोने चांदी जैसी संपदाओं से भरी रहती थी, किंतु कलयुगी लोगों की अति लोलुपता और जनसंख्या विस्फोट के कारण मैं तार तार हो दुखी रहती हूँ। मकानों, दुकानों को सजाने के लिए तुमने मेरे श्रृंगार, पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है। ऊंची अट्टालिकाएं, बांध व सड़कें बनाने के लिए तुमने कहीं खालियां खोदी तो कहीं पहाड़ों को छेद डाला और मुझे खाली खोखला कर दिया। अब मैं बिल्कुल ही अपना संतुलन खो चुकी हूँ। मैं फूलों के बगीचे की तरह बहिष्ट कहलाती थी, आप कांटों के जंगल की तरह बिल्कुल रेगिस्तान बनती जा रही हूँ। अब पुनः तुम्हें ही अपनी माँ को सस्य श्यामला, उपजाऊ, समृद्ध एवं खुशहाल बनाना होगा। तुम्हारे संस्कार परिवर्तन द्वारा सृष्टि के नव सृजन की मैं आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, ताकि मैं पुनः अपने संतानों को ममता की छाया प्रदान कर सकूं।
साईं साईं की ये भयानक आवाजें तुम्हारे मन में भय उत्पन्न कर रही होंगी, पर डरो मत, ये मैं हूँ, कभी न अलग होने वाला तुम्हारा साथी, जो सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ, ये मैं हूँ वायु। मैं सारे संसार में ऑक्सीजन प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारा प्राण तत्व है। इंद्रियों के माध्यम से तुम मेरे स्पर्श का अनुभव करते हो, फूलों की रसीली गंध तुम मेरे ही प्रवाह में प्राप्त करते हो, मेरे स्नेह में लहराने वाले हरे भरे वृक्ष वनस्पतियाँ मेरे ही स्वच्छ झोंकों में श्वास ले प्रफुल्लित होते हैं। तभी तो लोग मुझे पवन देव के रूप में पूछते हैं। मैं भले ही अदृश्य हूँ, लेकिन मेरे ही प्रवाह में संसार प्रवाहित है। किंतु आज तुम मेरी बदली परिस्थितियों के कारण मुझसे ही घृणा करने लगी हो, क्योंकि प्रदूषण ने तुम्हारा जीना दूभर कर दिया है। आखिर इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? तुम मनुष्यों के श्वास द्वारा निकली हुई दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए प्रकृति माता ने पेड़ पौधों की रचना की है। ऊंची अट्टालिकाएं बनाने, सुख साधनों को जुटाने हेतु तुमने प्रकृति को नष्ट किया। कल कारखानों के धुएं के बादल व मोटर यानों जैसे परिवहन साधनों की दुर्गंध से मुझे दूषित किया। यही नहीं, तुमने हर तरह अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। मनुष्य हमारे सखा हैं, दोस्त हैं। तुम्हें खुशियां देने के लिए ही हमारी रचना हुई है। वास्तव में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते करते मनुष्य के कर्म ही भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए सावधान, जागो और इस सत्य को महसूस करो कि मानव मन की मलिनता ही इस संसार की मलिनता का वास्तविक कारण है। तो आओ मन की आसुरी वृत्तियों को खत्म करने का प्रयत्न करें, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का यही उचित समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं।
झर झर बहते झरने वह कल कल करती नदियाँ कितनी सुखदायी लगती हैं। जल तरंगों की आवाज तुम्हें मनोहारी समुद्र तट की याद दिलाती है। असीम सागर की तरह मैं जीवन के हर क्षेत्र में भी तुम सभी आत्माओं से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरा ही नाम है जल अर्थात पानी। मैं पृथ्वी में 69% समाई हूँ, साथ साथ प्रत्येक शरीर में भी 53% व्याप्त हूँ। तुम्हारे शरीर में मैं इस तत्व के रूप में विद्यमान हूँ। जिह्वा द्वारा जो तुम पदार्थों का रसास्वादन करते हो वो मेरे बिना संभव नहीं। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल जो न होता तो ये जग जाता जल जैसी अनेक महिमा गाकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। जहाँ जल का तनिक अभाव होने लगता है वहाँ मुझे दूध की दरिया और शहद की नदियाँ तक कहने लगते हैं। गंगा यमुना सरयू निर्मल कहते हुए लोग मेरी स्तुति किया करते हैं। तुम जलपान करते प्यास से तृप्ति का अनुभव करते हो। शुद्धता व शीतलता के लिए स्नान आदि में भी मेरा उपयोग होता है। यही नहीं, जीवन जगत के लिए आवश्यक अन्न व फलादि उत्पादन में सिंचाई के रूप में भी मुझे प्रयुक्त करते हो। मंदिरों में चरणामृत व अभिषेक के रूप में मैं कितनी प्रयोग की जाती हूँ। मुझ में डुबकी लगाकर लोग मुझे पतित पावनी भी कहते हैं। देखा, कहा नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी शीतलता एवं सुखदायी स्वरूप से लाभ लेने की बजाय तुमने आज मुझे हदों में विभाजित कर दिया है। ये जल समस्या, जल विवाद, लड़ाई झगड़े सब इसी का ही तो परिणाम है। जगह जगह बांध बनाने तथा गंदगी डालते रहने से धरती ही मरुस्थल बनती जा रही है। तटों को सुखाना, नगरों को बसाना पृथ्वी व पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता जा रहा है, जिसकी परिणति में तुम्हें सुनामी जैसी आपदाओं से जूझना पड़ता है। अमृतमयी नदियों में निर्मल धारा बन बहती ही रहती थी। सबको धोकर शुद्ध करने वाली मैं आज इतनी मलीन हो गई हूँ कि मुझे ही शुद्ध करने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। मैं सारे संसार की मुफ्त सेवा करने वाली आज बोतलों में बंद दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हूँ। मुझे अमूल्य जीवन दान देने वाले का मूल्य लगाकर तुमने मुझे बाजार की वस्तु बना दिया है। मैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार से बहुत ही दुखी और चिंतित हूँ। सोचती हूँ क्या मेरा गुजरा हुआ स्वर्णिम जमाना फिर से वापस आएगा। तुम खुद ही सोचो मेरे कल और आज के विषय में। पुनः अब विश्व बंधुत्व की अवधारणा को धारण करो, जिससे समस्त जगत में पवित्रता, सुख शांति एवं आनंद की लहर फैल सके। सभी एकता के सूत्र में बंधकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। तुम्हारी सतो प्रधान दृष्टि, वृत्ति, कृति से ही मैं निर्मल, शीतल और स्वच्छ बन पाऊंगी।
मैं नहीं समझता कि मेरी पवित्र सेवाओं के विषय में कुछ कहने की जरूरत है। हाँ, ये मैं हूँ अग्नि। धरती के अस्तित्व एवं विकास में मेरा ही आधार है, क्योंकि मैं ही सूर्य हूँ। मेरी रोशनी के बलबूते पर तुम संसार को देख रहे हो। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अंधकार में है। केवल दिन में ही नहीं, रात्रि में भी मैं ही प्रकाश देता हूँ। मेरे विभिन्न ऊर्जा स्रोत तुम्हारे रोज की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। प्रकाश एवं ऊष्मा देने के साथ साथ वर्षा होने तथा ऋतु परिवर्तन का भी मैं ही निमित्त कारक हूँ। रसोई घर में ईंधन के रूप में मेरा ही प्रयोग होता है। मंदिरों में उपयोग होने वाली दिव्य ज्योति मैं ही हूँ। मेरी ही ज्वाला से मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सहारा देता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा उपयोग संस्थात्मक कार्यों में भी किया जाता है। क्रोध व हिंसावश आगजनी में सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति नुकसान कर देते हैं। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए युद्धों में व अन्य युद्धों में मेरा दुरुपयोग कर अपने अहम को सिद्ध करते हैं। प्राकृतिक एवं अनैतिक कृतियों से मुझे इतना गर्म कर दिया है कि आज मेरी गर्मी जानलेवा बन गई है। विश्व तापक्रम को सामान्य रखने वाले वर्षायुक्त बादल व छाया देने वाले पेड़ बहुत कम हो गए हैं और फिर तुम्हारी अत्याधुनिक जीवन पद्धति ने ओजोन परत में छिद्र करते हुए दुनिया को महा विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। सृष्टि के आदिकाल में मैं शांत था। दिव्य सृष्टि को उतनी ही गर्मी प्रदान करता था जितनी की आवश्यकता थी। मुझसे किसी को हानि नहीं होती थी। मैं चिर बसंत प्रदान किए था। याद रखो, तुम्हारा अनियंत्रित उपयोग और अनियंत्रित इंद्रिय लोलुपता तुम्हारे हित में नहीं। मनुष्यों के मन में धधकती जब ये काम क्रोध की अग्नि शांत होगी, तब ही मेरी भौतिक अग्नि भी आराम और खुशी प्रदान कर सकेगी। अतः समय के संकेत को समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो।
Om Shanti. A very good evening and a very warm welcome to all the jurist delegates who have arrived here in Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, World Headquarters, Shantivan Complex, for a National Jurist Conference on Spiritual Power for a Healthy and a Lawful Society. So, please put your hands together for yourselves. It's a hearty welcome to all of you. And it's an honor to call upon the dais, Honorable Mr. Justice A.N. Jindalji, former Judge, High Court of Punjab and Haryana, Chandigarh. So please, the chief guest of the evening, Honorable Mr. Justice S. Pujahari ji, Chairperson, Odisha Human Rights Commission, Bhubaneswar, if he is here, may kindly grace the dais. My privilege to invite on stage our guests of honor, Brother Sushil Kumar Rastogi, Presiding Officer, Debt Recovery Tribunal, New Delhi and Jaipur, and respected Rajyogini Lakshmi Didi ji, Director, Sonipat Retreat Center. I also invite upon stage respected Rajyogini B.K. Neelam Didi ji from Patan, Senior Rajyoga Teacher and Member Jurist Wing, Rajyogini B.K. Kavita Didi ji from Chandigarh, Senior Rajyoga Teacher and Executive Member Jurist Wing, so today, this reception session, let us all together welcome the world's almighty authority and sit in his remembrance for 3 minutes in silence. I also invite respected Rajyogini B.K. Jayanti Didi Ji. आज की शाम स्वागत का सत्र है, चारों ओर स्वागत की ही बहार होगी। मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वो भारत की परंपरागत परंपरा से हम सभी का स्वागत करेंगी। आप सभी को द्वार पर तिलक दिया गया है, यही तिलक की प्रथा अब मंच पर ही निभाई जाएगी। ये स्वागत का दिन, स्वागत का पल है, आपका पथ पखारा है,
मेघों ने जल बरसाकर आपका रथ सवारा है, वृक्षों ने फूल बिखराकर। क्या गगन क्या अरावली नत हैं स्वागत में, खड़े हैं प्रेम आनंद सुख शांति स्वागत में, आपके आप भगत में। हमारी तालियों की गड़गड़ाहट से ये स्वागत सत्र गूंजता रहे। चंदन का टीका है आत्मज, आत्मिक भान में आ जाएं, प्रभु मिलन के अनुभवों के सागर में समा जाएं। पौधों के द्वारा बैच के द्वारा ये स्वागत चल रहा है। आज अपने हर्ष का मिलता न कोई अंत है, आज अपने हर्ष का मिलता न कोई अंत है, आपके आगमन से आनंद ही आनंद है। इस आनंद को जरा सभा की ओर से भी व्यक्त कर दीजिए। स्वागत शब्दों के द्वारा करने के लिए मैं इस समय मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी, जो चंडीगढ़ से हमारे बीच आई हैं। आप जूरिस्ट विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एक सीनियर राजयोग टीचर हैं और चंडीगढ़ में सेंटर 43A की आप इंचार्ज हैं। 1984 में आप इस संस्था के संपर्क में आईं और लॉ की ग्रेजुएशन लेते ही आप जूरिस्ट विंग की मेंबर बन गईं। कविता दीदी मास्टर्स सब्जेक्ट्स लाइक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शी हैज एक्सटेंसिवली टूर्ड इंडिया एंड अब्रॉड, डिलीवरिंग एट वेरियस नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड रिप्रेजेंटिंग इन वेरियस कैंपेन्स लाइक सद्भावना युवा साइकिल यात्रा, पर्यावरण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ग्राम विकास यात्रा एंड मेनी अदर थिंग्स। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये बरसात का मौसम है और हर तरफ फ्लू फैला हुआ है। आप में से तो किसी को नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक फ्लू जो अधिकतर पाया जाता है, जिसको फीलिंग का फ्लू कहा जाता है, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, कुछ किया या नहीं किया, तुरंत मन में एक फीलिंग आती है, फील बैड अबाउट इट। लेकिन हमारी कविता दीदी जी इस फीलिंग के फ्लू से बिल्कुल मुक्त हैं। और जैसा कि समझा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, तो बहुत सीरियस लोग होते हैं, तो बहुत रमणीकता से दीदी जी ने सबको ये ज्ञान सुनाया है। और आज आप अपनी वेलकम स्पीच भी, जिस गोइंग टू प्रेजेंट अ वेलकम स्पीच आई नो इन अ वेरी यूनिक स्टाइल, आदरणीय कविता दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी अपनों का अपने ही घर में स्वागत है। तो स्वागत कैसा, क्योंकि आप यहाँ ऐसे आनंद लेंगे जैसे आप सभी अभी तक तो सुना था माताएं मायके जाती हैं। आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि भाई भी अपने मायके आए हुए हैं, आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ सचमुच एक ऐसी निरंतर और सुंदर खुशबू फैली हुई दिखाई देती है कि ये खुशबू सभी चाहते हैं कि हम अपने दिलो दिमाग में भर कर जाएं, ऐसी प्यारी सी अपनेपन की खुशबू। जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे कि मधुबन खुशबू देता है और अपने घर जैसी खुशबू देता है। पहली बार जब मैं मधुबन आई थी तो वहां एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा देखा था। तब छोटा सा मधुबन होता था, सिर्फ पांडव भवन और सामने ओम शांति भवन भी था और कुछ नहीं था। इस संस्था की और कोई ऐसी बड़ी बड़ी, जैसे अब ये लगभग आप देखेंगे तो मनमोहिनी वन है, ये है, और भी मिला के 100 एकड़ जितनी जगह पर फैला हुआ है और बहुत सुंदर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। लेकिन उस छोटे से पांडव भवन, ओम शांति भवन, जो आप ऊपर माउंट आबू में जाकर देखेंगे, वहां एक बड़ी अच्छे सामने स्लोगन पढ़ा, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप पूरे ग्लोब का भला सोचिए लेकिन बिल्कुल अपने लेवल पर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छी लगी ये बात और आप सबके सामने आज हमारी वही पर्सनैलिटीज यहाँ हाजिर हैं जिन्होंने सचमुच ये सेवा की है कि पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व की कल्याण की भावना रखते हुए स्वयं से और अपने घर से, नजदीक से, बिल्कुल छोटी इकाई से ये काम शुरू किया। और आप जानते हैं इस संस्था का कि सारे विश्व में ये व्याप्त हो गई और पहली इतनी बड़ी नारी प्रधान संस्था है ये, तो बहनों को तो इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना खुशी? इतने बड़े लेवल पर मातृशक्ति ये सेवा कर रही है। और वैसे भी माताएं कोई भी बात फैलाने में बहुत होशियार होती हैं, तो ज्ञान की बातें भी वो बहुत अच्छी फैला सकती हैं। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर सेवा इस संस्था के द्वारा की गई और आज मुझे जो कर्तव्य दिया गया है वो बड़ा अच्छा कर्तव्य है कि मंच आसीन हमारे विश्व कल्याण, समाज कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं, जो कि इस मंच से अपने हृदय के उद्गार, अपनी बातें आप सबके माध्यम से, फिर आप आगे एक से एक ज्योत जगेगी, इस तरह से फैलाते जाएंगे। और हमारी निधि बहन बड़ी अच्छी बात बता रही थी कि जैसे फ्लू बीमारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ से एक फ्लू आप लेकर जाना, एक नई आदत, जैसे पहले आदत होती थी ना कितने बढ़िया से बढ़िया फंक्शन में जाना है लेकिन कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेनी है, नुक्स निकालने में एक्सपर्ट। देखिए अपने आप को कितनी चीजों में एक्सपर्ट हैं, डरने में एक्सपर्ट, अच्छे से अच्छी जगह भी कोई ना कोई डर की बात निकल आती है, कहीं कमियां देखने में, नुक्स निकालने में, चिंतित होने में, परेशान होने में। और आप एक्सपर्ट किन चीजों में होते हैं? जिसकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि कब से प्रैक्टिस शुरू की थी, कमियां निकालने की प्रैक्टिस, दुखी रहने की प्रैक्टिस, चिंतित रहने की प्रैक्टिस, टेंशन लेने की, टेंशन देने की, ये प्रैक्टिस पता नहीं कब से अनजाने में शुरू कर दी और इसमें एक्सपर्ट हो गए। तो इस धरती से आज एक नई एक्सपर्टीज अपने पास लेकर जाना अपने साथ, वो है शांत रहने की प्रैक्टिस, खुश रहने की प्रैक्टिस, हर हाल में संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस। इस मधुबन के चप्पे चप्पे, कोने कोने की हर चीज अच्छी से अच्छी है, उसकी प्रशंसा करने की, आपको जो साथी नए मिलेंगे उनसे दोस्ती करने की, उनकी भी प्रशंसा करने की प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस आप करते जाना और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इस एक्सपर्टाइज के लिए आप सभी को एडवांस में हार्दिक बधाई, आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत दिल से अभिवादन। क्योंकि अगर आप सभी यहाँ नहीं बैठे होते तो मंच आसीन हमारी विशेष महानुभाव किससे अपने दिल की बातें करते। तो इसीलिए आज शाम तक भी और आने वाले हैं, कल सुबह भी और गेस्ट आएंगे आपकी तरह। तो मैं स्वागत करती हूँ दिल से हमारे बहुत सीनियर, बहुत पुराने भ्राता जस्टिस A.N. जिंदल जी। आप भगवान के इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और उसका प्रचार बड़े दिल से करते हैं। आपकी युगल, आपकी वाइफ भी साथ आई हैं, आपकी धर्म पत्नी, तो क्योंकि वो इंजन अगर नहीं होता तो पीछे डब्बे नहीं आते हैं, तो लगता तो ऐसे है कि वही तैयार करके लेकर आते हैं। तो जस्टिस जिंदल जी का, उनकी वाइफ का, युगल का हम दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S. पूजाहारी जी। आप चेयरपर्सन हैं ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन। भुवनेश्वर से आप पधारे हैं, इतने दूर से भाई साहब आप इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए पधारे हैं, हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पूजाहारी जी का। आप हमारे बहुत अनन्य भाई हैं। इनके साथ ही हमारे प्यारे भाई सुशील कुमार रस्तोगी जी, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली से आप पधारे हैं, तो आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे बीच हैं। हमारी वो प्यारी बहनें परम आदरणीय, जो अपनी पवित्रता की शक्ति से सारे विश्व को सींच रही हैं, बहुत ही प्यारे से लेवल पर हर एक आत्मा का, जैसे गुरुकुल में गुरु टीचर की तरह, पेरेंट्स की तरह ख्याल भी रखते थे, पढ़ाते भी थे, तो ऐसे हमारी बहुत अच्छी दीदियां हमारे बीच इस स्टेज पर हैं। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आप हांसी से पधारे हैं। हांसी के अलावा आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर, वहां के भी आप डायरेक्टर हैं। बहुत बचपन से ही ज्ञान को समझा और समझाने में लग गए, तो अपनी किशोर अवस्था से ही बहुत विशाल सेवाएं आपने की हैं। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। राजयोगिनी जयंती दीदी जी इंदौर से पधारे हैं। आप भी सीनियर राजयोग टीचर इंदौर से हैं। हमें याद है 30-35 वर्ष पहले हम एक ही कमरे में पांडव भवन में रहते थे, सेवा करते थे। आप थोड़ा दादी के साथ प्रोग्राम बनाने की, प्रोग्राम अनाउंस करने की सेवा करते थे। जब आपका रेस्ट करने का टाइम होता था तो हम जैसी थोड़ी छोटी उम्र की कन्याएं उस वक्त थी उस कमरे में, तो हम आपको तंग करते रहते थे, सोने भी नहीं देते थे। तो ऐसा हमारा साथ रहा है पिछले 30-35 वर्षों से, हम आपको जानते हैं, देख रहे हैं। आपने जितना दिल जान से सबको पालना दी है, सेवा दी है। हमारी सीनियर दीदी राजयोगिनी B.K. नीलम जी, आप पाटन से पधारे हैं, जूरिस्ट विंग के मेंबर हैं। आपने अपनी किशोर अवस्था से ही पाटन के अतिरिक्त देश भर में अपने जैसी ही कितनी हस्तियां तैयार की हैं, अपने जैसे लीडर तैयार किए हैं। जे हम आदरणीय नीलम दीदी जी का भी दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बहुत प्यार से मुस्कुराते चेहरे से मंच का संचालन कर रही हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज हमारी निधि दीदी। बहुत प्यार से निधि बहन सबको स्वागत भी कर रही है। आज के रिसेप्शन सेशन का आनंद दिलाने में पूरी महारत से, कुशलता से मंच संचालन कर रही है। हम आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी तो हैं ही विशेष, क्योंकि आप बार बार इस हॉल में आएंगे, इस हॉल की कुर्सियों की शोभा बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म चीज, जब आप बैठेंगे आपके चारों तरफ एक सुंदर आभा मंडल का निर्माण होगा, तो आप सुंदर वाइब्रेशन से, अपने सुंदर विचारों से, अपने पॉजिटिव प्रेजेंस से इस हॉल को भी चार्ज करते रहेंगे तो आप सबका भी भगवान के इस घर में, आंगन में हृदय से स्वागत है, दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय कविता देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इस स्वागत को आप जोरदार तालियों के साथ इस हॉल को गुंजायमान कर दें। कहते हैं साजों की टंकार है तभी कहेंगे स्वागत की बहार है, सुरों की झनकार है तभी कहेंगे स्वागत की बहार है। तो अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे अति प्रिय मधुरवाणी ग्रुप का, जो हर अवसर पर एक नया स्वरचित गीत लेकर हमारे बीच सभी महानुभावों का स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत कम समय में आप सभी ये गीत तैयार करते हैं। ये सारे ही गीत, इनके बोल, इनकी धुन सब स्वरचित होती है। तो हम जोरदार तालियों के साथ मधुरवाणी ग्रुप का स्वागत करते हैं।
हेलो हेलो। ओम शांति। आप सभी अनुभव कर रहे होंगे जब से आप यहाँ आए हैं कि अपने ही घर में आए हैं, परमात्मा का घर अपना घर। तो आप सभी का हमारे सभी दादियों के तरफ से, वरिष्ठ भाइयों के तरफ से, मधुरवाणी ग्रुप और हमारे बीच में स्वर बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे सुधीर भाई जी, जिनके बहुत सारे एल्बम बने हैं, प्रताप भाई जो कि किचन में सेवा करते हैं। तो आप सभी को पूरे मधुबन परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि न्याय विदों का स्वागत करता प्यारा प्रभु परिवार है, परम न्यायकारी प्रभु करता, स्वागत है सत्कार है, स्वागत है सत्कार है।
शक्तिकरण से ही होना सबका उत्थान है, स्वस्थ और विधि सम्मत हो करना समाज निर्माण है। प्रभु न्यायकारी कर रहा, प्रभु न्यायकारी कर रहा, आपका मधुर आह्वान है। न्याय प्रेमियों, न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। न्याय प्रेमियों, न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। आध्यात्मिकता के द्वारा एकाग्रता जाती है, मन का विवेक जग जाता, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। आध्यात्मिकता के द्वारा एकाग्रता जाती है, मन का विवेक जग जाता, ज्ञान है, न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। के रंग में न्याय पालिका रंग जाए, सच कहते सूरत समाज की सुंदर सी बन जाए। आध्यात्मिकता के रंग में न्याय पालिका रंग जाए, सच कहते सूरत समाज की सुंदर सी बन जाए। स्वप्न वही साकार कर रहा फिर से भगवान है, न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। सकारात्मक परिवर्तन से विश्व बदलने वाले हैं, कथनी करनी एक है हम करके दिखलाने वाले हैं। सकारात्मक परिवर्तन से विश्व बदलने वाले हैं, कथनी करनी एक है हम करके दिखलाने वाले हैं। आध्यात्म नैतिक मूल्यों में सबका कल्याण है, न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। प्रभु न्यायकारी कर रहा, प्रभु न्यायकारी कर रहा, आपका मधुर आह्वान है। आध्यात्म सशक्तिकरण से ही होना सबका उत्थान है, स्वस्थ और विधि सम्मत हो करना समाज निर्माण है। प्रभु न्यायकारी कर रहा, प्रभु न्यायकारी कर रहा, आपका मधुर आह्वान है, न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान है। न्याय प्रेमियों न्याय विदों का स्वागत है, सम्मान
पधारे हैं।
जितना जोरदार गीत था उतनी ही जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उत्साहवर्धन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, On our work depends the coming of the India of the future. She is there, ready, waiting. She is only sleeping. तो उस सुषुप्त भारत को पुनर्जागृत करने के लिए सारे विश्व में भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किस प्रकार से अपना योगदान दे रहा है और उसमें ज्यूरिस्ट विंग का क्या रोल है, आइए जानते हैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी से। आप हमारे बीच कलानी सेंटर इंदौर से पधारे हैं, आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं और इंदौर जोन से आप ज्यूरिस्ट विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई और 1978 से आप समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। विशेषकर भिलाई, रायपुर, दुर्ग, कोटा, बूंदी, उज्जैन, रतलाम आदि स्थानों पर आपने अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दी हैं। वर्तमान समय 1987 से आप इंदौर के कालानी नगर में उससे संबंधित लगभग 40 गांव में आपने आध्यात्मिक क्रांति को फैलाया है और विशेष कॉन्फ्रेंसेस में आपने ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया है। खास बात आप देखिए, हार्मनी ऑफ हार्ट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक बेहतर भारत और एक शाम राष्ट्र के नाम, इस तरह से राष्ट्र की सेवा में आध्यात्मिक सेवा ने अपने संपूर्ण जीवन लगाया है। आदरणीय जय दीदी से हम इस इंस्टीट्यूशन का और जूरिस्ट विंग का परिचय प्राप्त करते हैं। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि हम सब एक बहुत सुंदर बातों को सुनने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब कहाँ आए और ये कौन सा स्थान है और यहाँ जो जिस विंग के लिए आप आए हैं वो विंग भी कैसा है, उसका इंट्रोडक्शन मैं आप सबको देना चाहती हूँ। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्मानीय बनाता है। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के लिए दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत कुछ समय से प्रयास चल रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कैसे मानव मूल्यों को लोगों के जीवन में स्थापित करें। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना का स्रोत रहा है। सन 1936 में सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्म मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अपने दिव्य साक्षात्कार कराए और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपना कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 को संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपने देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में यह संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अनेक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज में आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राज्यों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया, न्याय से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत जुरिस्ट, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग, डॉक्टर्स एवं अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 22 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो 1936 से आज तक अविराम सेवा कर रही है। इसके साथ एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसी विंग जो हमने अभी आपको बताया 22 विंग के अंतर्गत एक डॉक्टर्स विंग ने राजयोग विधि के द्वारा समाज में बहुत अपना नाम सुशोभित किया है। उन्होंने अनेक बड़े बड़े बीमारियों पर राजयोग विधि द्वारा प्रयोग करके उन्हें सुंदर स्वास्थ्य प्रदान किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर्स लोगों ने दिखाया हुआ है। 1992 में आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित हुई। 1994 में मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी को जॉइंट इंटरनेशनल मुंबई से सामाजिक कार्य के लिए जॉइंट अवार्ड दिया गया था तथा विश्व धार्मिक संसद नई दिल्ली द्वारा धर्म रत्न अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हुए हर धर्म, जाति, आयु, भाषा एवं हर देश के व्यक्ति परिवार सहित इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहने अपनी संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त होकर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निमित्त रहकर कार्य कर रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कि इस संस्था में जो विशेष जुरिस्ट विंग है उसके बारे में। विभिन्न वर्गों के लोगों एवं उनके प्रोफेशन से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु ब्रह्मा कुमारीज की भगिनी संस्था राज्योग एजुकेशन एवं रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 22 विंगों की स्थापना की गई, जिसमें जुरिस्ट विंग सबसे पुराना विंगों में से एक है, जिसका गठन 1984 में हुआ था। जुरिस्ट विंग इस संस्था में अपना प्रमुख स्थान इसीलिए ले रहा है क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसमें लीगल डिपार्टमेंट का, खासकर न्यायविदों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि जो बात लीगली एक बार डिक्लेयर हो जाती है तो उसे सभी को मानना ही होता है। जुरिस्ट के पास यदि आध्यात्मिकता का बेस होगा तो उनका जीवन पर्सनली भी सुंदर होगा और प्रोफेशनली भी सुंदर होगा। इस विंग की शुरुआत आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी द्वारा की गई थी, जो स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हम मानते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं वो जुरिस्ट ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आर्ग्यू करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है और वे यदि आध्यात्मिक राज्यों को जीवन शैली को अपना लें तो दुनिया को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए इस विंग में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हैं, जैसे जजेस, एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स, नोटरीज, डायरेक्टर्स, इनडायरेक्ट एंड कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉ प्रोफेसर्स एवं लीगल डिपार्टमेंट से जुड़े सभी लोग और लगभग 800 जुरिस्ट इस विंग के सदस्य वर्तमान में हैं। इस विंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित न्यायविद माननीय न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर जी और अन्य का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान समय माननीय न्यायमूर्ति वी ईश्वरिया जी, माननीय न्यायमूर्ति ए एस पच्चाकुरे जी इस विंग के संरक्षण सदस्य हैं। माननीय न्यायमूर्ति बी डी राठी जी विंग के उपाध्यक्ष हैं एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी विंग की अध्यक्ष हैं। चार राष्ट्रीय समन्वयक और एक मुख्यालय समन्वयक हैं। यह जूरिस्ट विंग क्यों बनाया गया? यह विंग सक्रिय रूप से ऐसे तरीके और साधन विकसित करने की दिशा में काम करता है जिससे कानूनी बिरादरी और पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में लव और लॉ का संतुलन बना सके। ये उन्हें सत्ता न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है जिससे एक बेहतर समाज की स्थापना होती है। आज समाज में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। समाज में हर जगह अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यायिक प्रणाली और न्याय शास्त्र के बावजूद यह समाज की सुरक्षा और स्थिरता में प्रभावी योगदान देने में असमर्थ है। ढेर सारे कानून नियमित वकील, कानूनी पुस्तकों के विशाल पुस्तकालय, न्यायिक मिसालों के पहाड़, पुलिस अधिकारियों और दंड संस्थाओं को बनाए रखने के लिए करदाताओं द्वारा दिए गए लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद अपराध कितना बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार जैसे विकारों का पूर्ण गुलाम बन गया है। जितने भी पाप या अपराध हुए हैं, यद्यपि उनका स्थूल कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु अपराध करने के पीछे मूल कारण यहाँ वर्णित कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य ही है। इन्हीं कारणों को केंद्र बिंदु समझकर यह विंग विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर कार्यरत है, जिसमें आध्यात्मिक और मौलिक शिक्षाओं के माध्यम से आम जनता में कानून का पालन बढ़ाना, नैतिक मूल्य और नैतिक व्यवहार को कानूनी और न्यायिक प्रणालियों में लागू करने की सुविधा और समर्थन प्रदान करना। जूरिस्ट विंग एक ओम शांति नामक कानून का नया विज्ञान प्रस्तावित करता है। प्राकृतिक और दैवीय कानूनों की समझ के आधार पर आध्यात्मिक रूप से सत्य और न्याय को बढ़ावा देना और अपराध में कमी लाना, अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को में आध्यात्मिक विवेक और न्याय शास्त्र अलग हो जाते हैं। न्याय शास्त्र अपराधी को सलाखों के पीछे डाल देता है, उसे कठोर सजा देता है। आध्यात्मिक विवेक अपराधी को मूल चेतना को जागृत करने और उसे प्रबुद्ध करने के तरीके को अपनाता है। उसे तनाव और आघात से मुक्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास सिखाता है। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए इस विंग के माध्यम से नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नित नए प्रयासों के माध्यम से कॉन्फ्रेंसेस, संगोष्ठियां आयोजित की जाती रही है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपना वाक्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी। आपने जूरिस्ट विंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही कि लव और लॉ, इसका बैलेंस कैसे हम जीवन में बनाएं, समाज में बनाएं, इसका मार्ग प्रशस्त कर रहा है ये जूरिस्ट विंग। कहते हैं ना, लव इज एन इनर फ्लावरिंग, लव इज एन इनर फ्लावरिंग, लॉ इज एन आउटवर्ड परफॉर्मेंस। तो जब दोनों का समन्वय होगा तो जीवन कितना सुंदर होगा। और एक और बात आपने विशेष बताई कि कैसे न्याय दंड तो दे रहा है लेकिन आध्यात्मिकता जो है वापस कैसे समाज में पुनर्स्थापित कर सके उसके लिए कार्य करती है। कहा भी गया है, एवरी सेज हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो इसी संबंध में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भी एक हेल्दी और लॉफुल सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश की जाए उसी के ऊपर विचार विमर्श करना है। क्यों हमें स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत के लिए ऐसा स्वप्न देखा था। उन्होंने कहा था, Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches out its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into that heaven, my Father, let my country awake. तो आज इसी प्रेयर के साथ में हम शुरू करते हैं आज का कुछ टेक्निकल सा सेशन, जिसका टॉपिक है स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्दी एंड लॉफुल सोसाइटी. एंड आई नाउ इनवाइट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर सुशील कुमार रस्तोगी जी, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली एंड जयपुर. He came into UP Judicial Services in 1992 and then forth he has served in various districts of Uttar Pradesh as district judge. And he is also, I was just talking to him, so he said ki 2003 mein he had visited Mount Abu as a visitor. So it's more than 20 years he has now come as a guest. So, संगम की धरा से त्रिवेणी के तट पर इन्हें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का अनुभव हुआ आज हमारे बीच इसी आध्यात्मिक शक्ति को प्रस्तुत करने के लिए. आदरणीय सुशील कुमार रस्तोगी भ्राता जी को मैं इनवाइट करती हूँ.
ओम शांति. आज इस कॉन्फ्रेंस में, इस मंच पर आपने मुझे आमंत्रित कर अपनों के साथ एक गूढ़ विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है. इसके लिए हम इस संस्थान को साधुवाद देते हैं. जैसा कि अभी तक जो विचार विनिमय हुआ है उसमें ये तथ्य स्पष्ट रूप से निकल कर आया है कि अध्यात्म और न्याय दोनों एक गूढ़ विषय हैं. ये आम जनता से कहीं कुछ दूर हैं. कहीं ये कहा जाता है कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी मंदिरों, मठों या चर्चों में बैठे हुए आध्यात्मिक लोगों के लिए है, आम जनता का उससे कोई सरोकार नहीं. उसी तरीके से न्याय और विधि के बारे में भी ये कहा जाता है कि यह विषय न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं द्वारा संचालित एक व्यवस्था है जिससे आम जनता का कोई परिचय नहीं है. इन दोनों गूढ़ विषयों में कितना सामंजस्य है और कितनी एक दूसरे पर आश्रित होने का विधान है, इसको आप जब एक न्यायाधीश के रूप में या एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे तभी इसका ज्ञान आपको होगा. स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यह है कि हम बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया, हमारे मन की दुनिया, हमारे मस्तिष्क की जो दुनिया है उसका भी अध्ययन करें. आपने देखा होगा कि एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता का सबसे बड़ा एक विषय ये होता है कि इसको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें. वो शिक्षा किस विषय के लिए होती है? हमें अपने जो आउटर वर्ल्ड है उसको हम कैसे डील करें, हम अपने आउटर वर्ल्ड को कैसे अपलिफ्टमेंट उसका करें, इसके लिए होती है. कोई बच्चा आगे चलकर चिकित्सक बनता है, कोई अधिवक्ता बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक टीचर बनता है, या विभिन्न विषय जो हैं विज्ञान के और आध्यात्म के वो बनता है। लेकिन ये एक विडंबना है कि हम कभी भी इस बात के लिए विचार नहीं करते कि हम आउटर वर्ल्ड के लिए तो इतना कर रहे हैं, लेकिन हम इनर वर्ल्ड के लिए उसे क्या शिक्षा दे रहे हैं। हमें अगर आउटर वर्ल्ड के लिए शिक्षा की आवश्यकता है तो हमें इनर वर्ल्ड जो अपना अंतरात्मा है उसके विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। ये समय आ गया है कि जब हम इस विषय पर भी सोचें। और मुझे ये कहने में हर्ष और गर्व दोनों है कि ये विश्वविद्यालय हमें आउटर वर्ल्ड के साथ साथ इनर वर्ल्ड की शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, जो सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसा कि आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कहा। उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि आध्यात्मिकता जो है वो मठों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे विचारों को मजबूत बनाने के लिए, हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरी चीज कि कैसे आध्यात्मिकता हमारी न्यायपालिका और हमारे न्याय को प्रभावित कर सकती है। देखिए, न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि हम यदि एक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जाते हैं एक, तो हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति मेरे सामने आया है उसको उसके अपराध के लिए उचित दंड मिले। लेकिन ये भी विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं किया जाता तब तक उसे हम दोषी नहीं मानते। इसका पीछे तर्क ये है कि यदि हम उसको पूर्व में ही प्रथम दृष्टि से ही उसको दोषी मानेंगे तो कहीं हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और हम चीजों को उस तरीके से नहीं सोचेंगे जिस तरीके से स्वतंत्र रूप से हमें सोचना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें ये बल देती है, हमें ये शक्ति देती है कि हमारे सामने जो साक्ष्य आए उसका हम विश्लेषण आत्मशक्ति के साथ करें। आज के युग में जहां पर सोशल मीडिया का जमाना भी आ गया है, न्याय करते समय हम किसी भी, चाहे वो सोशल मीडिया के प्रेशर हो, मीडिया के प्रेशर हो या कोई अन्य प्रेशर हो, उससे बिल्कुल प्रभावित हुए बिना अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सजो करके, उनको इकट्ठा करके ये आत्मबल लाएं कि जो सही है उसी को हम करें। फिर अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके बाद में ये भी तय करना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो ये बताए कि उसको कितना दंड देना चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था में दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पहलू ये है कि क्या इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है या अथवा नहीं। जब ये सिद्ध हो जाता है तब भी न्यायाधीश को ये शक्ति दी गई है कि वो अब विचार करे कि उसको आखिर कितना दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अगर हत्या की है, किसी व्यक्ति ने अगर चोरी की है, किसी व्यक्ति ने कोई अन्य अपराध किया है तो उसे एक निश्चित दंड ही मिले। किन परिस्थितियों में उसने वो अपराध किया, किस कारण, वो क्या कारण थे जिसके कारण वो इसके लिए मजबूर हुआ, या क्या उसने एक सोची समझी रणनीति की तरह उस अपराध को कारित किया, इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तब उसके दंड की मात्रा निर्धारित होती है। वैसे ही अधिवक्ता भी जब किसी केस को न्यायालय में प्लीट करते हैं तो उनको भी कहीं न कहीं ये आत्मबल की आवश्यकता होती है कि वो ये देखें कि हम कभी इस आत्मग्लानि से न भरें कि मैंने एक निर्दोष को सजा दिलवा दी या मैंने एक दोषी को अपनी चतुर्बुद्धि से या अपनी इंटेलिजेंस से उसके दंड से बचा लिया। क्योंकि जब एक व्यक्ति के लिए कोई केस लड़ता है तो उसका उद्देश्य होता है कि हम तथ्यों को सही रूप से न्यायालय के सम्मुख रखें। कभी कभी उसको दंड भी मिलता है और कभी कभी उसको छूट भी जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अधिवक्ता को मालूम होता है कि यह व्यक्ति निर्दोष है लेकिन इसको न्यायालय से सजा हो गई। कभी कभी ये भी व्यक्ति सामने आता है कि जिसने सजा जिस जो दोषी था वो निर्दोष साबित हो गया। लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपीलीय न्यायालय में जाकर उनको नए तरीके से रखना ये भी उनका दायित्व है। तो आध्यात्मिकता जो है वो हमारे न्याय के लिए एक अच्छे समाज के लिए एक बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ये भी है कि दो विषय आते हैं कि जब हमारे समाज में कोई भी क्राइम बढ़ता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम क्राइम को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देकर के रोक सकते हैं। इतिहास ये गवाह है, इस बात का गवाह है कि केवल कठोर दंड देने से अपराध नहीं रुकते। आप दंडों को कितना भी कठोर करते जाएं, अपराध नहीं रुकेंगे, अपराधी बढ़ेंगे। उसके लिए आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। हम अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डालें, हम उनको ये शिक्षा दें कि वो अपराधों से दूर हो, और जब अपराधों से वो दूर होंगे तो हमें उन्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो एक समाज में अपना योगदान देंगे। जिस व्यक्ति को हम दंड देकर एक समाज में योगदान देने से रोक सकते हैं, उस व्यक्ति को हम प्रेरित करके आध्यात्मिकता देके समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये संस्थान इस तरीके की शिक्षा दे रहा है, और मुझे ये कहने से गर्व महसूस हो रहा है कि जब से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ, जब भी मुझे कोई निर्णय लेना होता है तो मैं सोचता हूँ कि एक निर्णय देते समय भी एक पॉजिटिविटी रहे, निगेटिविटी ना रहे। जैसे कि मैं किसी को दंड भी दे रहा हूं तो मेरे मन मस्तिष्क में कहीं क्रूरता ना आए, कहीं ये ना आए कि मैं किसी से प्रभावित होकर ये दंड दे रहा हूं। दंड देते समय भी मुझे सकारात्मकता की आवश्यकता होती है, जिससे कि अगले दिन हम उसी आत्मबल के साथ दूसरा केस देखें। जैसे कि आजकल मैं लोन्स के संबंध में कार्य देख रहा हूं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बैंक से इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो ऋण चुकाने में समय से अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका ये उस उद्देश्य शुरू से होता है कि मुझे इसको वापस नहीं करना। तो जो व्यक्ति किसी कारणवश ऐसा न कर सका हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे कुछ समय दे दें, हम कुछ ऐसा करें, मिल बैठ करके मीडिएशन से कंसिलिएशन से हम ये करें कि हमारे न तो वित्तीय संस्थानों का कोई अहित हो और उस व्यक्ति को भी सामाजिक और आर्थिक हानि ना हो, जिससे दोनों का कार्य चलता रहे। तो आध्यात्मिकता और पॉजिटिविटी मानव के जीवन में अगर होगी तो वो हर क्षेत्र में उन्नति की ओर राष्ट्र को ले जाएगा, और यदि निगेटिविटी से वो कोई भी काम करेगा, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो अध्यक्ता हो, तो वो कार्य ना तो उसको सुख देगा ना ही वो राष्ट्र को आगे ले जाएगा। आज आपने मुझे अपने विचारों को अपने साथ अव्यक्त करने की ये अवसर दिया है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय भ्राता जी का। आपने कहा दंड और पुनर्स्थापना दोनों साथ साथ चलते हैं। न्याय में भी कहा है कि भले 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और एक बात जो आपने कही वो मैं देखती हूँ रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कहा था, मोरालिटी कैन नॉट बी रेगुलेटेड, मोरालिटी कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड, बट बिहेवियर कैन बी रेगुलेटेड. सिखाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिस किया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है. जुडिशियल डिक्रीज में नॉट चेंज द हार्ट्स, यस दे कैन रिस्ट्रेन द हार्टलेस, ये जरूर है. और आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. अब आगे बढ़ते हैं. मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी हैं, जो हमारे बीच सोनीपत से पधारे हैं. आप सोनीपत रिट्रीट सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर हैं और उससे रिलेटेड सारे सेंटर्स को भी आप बहुत कुशलता से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं. आप बहुत वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं. ब्रह्मा कुमारी से आपका एसोसिएशन 1964 से रहा है और आपने लौकिक शिक्षा भी बहुत ऊंची प्राप्त की है. आप डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपने लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी हैं. ज्यूरिस्ट विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब जोन की तरफ से. और खास तनाव प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोचने की कला, खुशनुमा जीवन जीने की कला, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, वैल्यू एजुकेशन, इस तरह से बहुत सारे आध्यात्मिक कोर्सेज आपने कितने ही आत्माओं को प्रेरित किया है, पढ़ाया है. कितने ही स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, भारत विकास परिषद में आपने वक्तव्य प्रदान किए हैं और कितने ही संस्थाओं ने आपको आध्यात्मिक सेवा के लिए सम्मानित भी किया है. आप जरूर इनसे लाभान्वित होंगे. एक बात जरूर है जो मैं कहना चाहूंगी. जस्टिस अर्ल वॉरन ने एक बार कहा था, इट इज अ स्पिरिट नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ दैट कीप्स जस्टिस अलाइव. इस स्पिरिट को ही हमारे बीच में, आध्यात्मिकता को हमारे बीच में लेकर आ रही हैं आदरणीय दीदी लक्ष्मी जी.
ओम शांति. आप सभी भी एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम शांति. मंच पर उपस्थित न्याय प्रभाग से जुड़ी हुई महान हस्तियां, सभा में उपस्थित भारत देश के कोने कोने से आए हुए सभी न्याय प्रेमी तथा अन्य सभी भाई बहने, आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे की जाए. वर्तमान समय हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, उसकी जैसी एक आंधी सी चल रही है. यद्यपि चारों तरफ सुरक्षा तंत्र का जाल बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज हमारी माताएं, बहनें, कन्याएं अपने घरों में, अपने वर्क प्लेस पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है. तो चारों तरफ की ये जो ऐसी व्यवस्था है, इसी को देख करके किसी कवि के ये शब्द हैं, कहीं पर खून, कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला. कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए. और ऐसी विकराल परिस्थितियों के अंदर कोई भी व्यक्ति एक आशा भरी दृष्टि से जब निहारता है तो वो जुडिशरी की तरफ ही निहारता है कि मुझे यहां से न्याय प्राप्त होगा. और इसीलिए लोग अदालत को न्याय के मंदिर के रूप में देखते हैं और न्यायदाताओं को उस मंदिर के देवता के रूप में देखते हैं। इसलिए न्यायदाताओं का जो जिम्मेवारी है, जो कर्तव्य है, वो बहुत बड़ा है और उस कार्य को बहुत बखूबी कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जो मिसिंग लिंक है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आपने यहां आने के बाद आज के मंच पर भी कई बार आध्यात्मिक शब्द सुना, तो कुछ भाई बहने अध्यात्म जब कहा जाता है तो एक धर्म को, एक रूढ़िवादिता को, एक पूजा पाठ को, प्रेयर्स को, केवल उसी को अध्यात्म समझ लेते, लेकिन धर्म अलग है, रिलीजन अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। धर्म के नाम पर हम समाज में बढ़ते चले गए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सब अलग अलग होते गए, लेकिन आध्यात्मिकता हमें जोड़ती है, हमें एक करती है। आध्यात्मिकता का मतलब ही क्या है? स्पिरिचुअलिटी, स्टडी ऑफ स्पिरिट। सबसे पहले हम सबके अंदर एक चेतना है, एक आत्मा है और हम सब एक ईश्वर पिता की संतान है। तो यहां हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं रहती, हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है। एक अपराधी में भी आत्मा है, न्यायाधीश में भी आत्मा है और हम सब आत्माएं एक ईश्वर पिता की संतान है। तो जब उस भाव को जीवन में लेकर के चलते हैं तो वहां जो सच्चा न्याय है वो हो पाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो हमारी इनर जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करता है। आंतरिक शक्तियां, अंतर विवेक, अंतरात्मा को जागृत करता है और जब अंतरात्मा जागृत होती है तभी सच्चा न्याय दे पाते हैं या कर पाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक विकास ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अति आवश्यक है। अभी मेरे से पूर्व ब्रदर रस्तोगी जी बहुत सुंदर बात सुना रहे थे कि अपराध केवल पनिशमेंट देने से खत्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके अंतरात्मा को जागृत करना, उनके विवेक को जागृत करना, उनके अंदर रिफॉर्म करना, उनके अंदर ट्रांसफॉर्म करना, वो जब उनका मन बदलेगा तब समाज से अपराध दूर होंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर भी जितनी फाइल हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गीता में भी कहा गया है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम कामः क्रोधः लोभः। काम, क्रोध, लोभ, हम देखते हैं ये ऐसे विकार हैं जो एक किस्म से नरक के द्वार हैं। आज हम अपनी युवा पीढ़ी को भी देखें तो काम और क्रोध, काम वासना और क्रोध जिसके वशीभूत होकर के इतने अनर्थ कर रहे हैं कि वो लगता ही नहीं कि मानव हैं, लेकिन दानव से भी बढ़कर हैं, जिसकी घटनाएं हम देख रहे हैं समाज के अंदर। तो इन विकारों के ऊपर जो कंट्रोल है वो पनिशमेंट से नहीं हो सकता केवल, लेकिन उसके लिए आत्म जागृति, आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी वो बहुत जरूरी है। उसका जब समाज के अंदर प्रसार प्रचार होता है और एक एक व्यक्ति का मन बदलता है तब जीवन से अपराध खत्म हो सकते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय और विशेष रूप से जो जुरिस्ट विंग है वो यही कार्य करता है कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में जागृति कैसे आए, जीवन मूल्य कैसे जागृत हों, क्योंकि ये हमारा भारत देश कितना महान है जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, जहां न्याय के लिए बड़े बड़े बलिदान दे दिए गए हैं, अपने पुत्रों का भी बलिदान दे दिया गया, ऐसी ये भारत की भूमि है। तो उन जीवन मूल्यों को फिर से कैसे जागृत किया जाए, फिर से कैसे जीवन में उतारा जाए, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की और मेडिटेशन की जरूरत है। आध्यात्मिकता ही मेडिटेशन सिखाता है कि मन को हम कैसे ईश्वर के साथ जोड़ें, तो ये मन शक्तिशाली बन जाएगा। और जब ये मन शक्तिशाली होगा तो वो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि दुर्योधन को जब ये कहा गया, जब उसे ये कहा गया कि केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, तो उसने कहा सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा क्या ये धर्म है, तो उसने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है पर उस पर चलने की प्रवृत्ति मेरी नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता हूं। क्या यही स्थिति आज के इंसान की नहीं है? जब वो कोई भी गलत काम करता है उसे पता है ये गलत है फिर भी वो करता है, तो उस समय वो जो ईश्वर का स्वरूप जिसको मान लेते हैं तो श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो दुर्योधन था, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं था। यही बात गीता में अर्जुन भी पूछता है भगवान से कि इंसान से पाप कौन सी चीज करा देती है, वो चाहता नहीं है फिर भी पाप क्यों हो जाते हैं। तब उसे जवाब दिया कि कोई शक्ति है जो अंदर बैठी है और उस वो शक्ति के वशीभूत होकर के अपने मन के बुद्धि के इंद्रियों के वश में होकर के इंसान गलत काम करता है और उनको बदलने के लिए योग की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वही मेडिटेशन सिखाया जाता है, हर व्यक्ति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि जेलों में भी जाकर के कैदियों को अपराधियों को भी वो मेडिटेशन सिखाया जाता है ताकि उनका मन बदले उनका जीवन बदले और वो अपराध की जो प्रवृत्ति है उनकी वो खत्म हो जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही प्रयास है और हमारी ये शुभकामना है कि इस कार्य में आप न्याय प्रभाग की महान हस्तियां जो अपने आप में बहुत महान है जिम्मेवार है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी को भी अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे तो सचमुच में इस समाज के बहुत सारे दुख और कष्टों को दूर करने में मददगार बन सकेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, आपने कहा कि अगर हम व्यक्ति को मूल्य सिखा दें तो अपराध अपने आप जगत से मिट जाएगा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संसार के हर कोने तक हर वर्ग तक इसी संदेश को आध्यात्मिकता को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था एक ऐसा भारत हो जिसे राम राज्य कहा जा सके, लेकिन सोचने की बात है क्या एक अकेले राजा के राम होने से राम राज्य आ जाएगा। वास्तव में राम राज्य तो उसे ही कहा जाएगा जहां राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो हर व्यक्ति जब राम जैसा होगा तो ही राम राज्य हो सकता है। तो इसी कार्य में ब्रह्मा कुमारीज आगे बढ़ रहे हैं और अभी मैं हमारे बीच हमारे इस सेशन के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पुजाहरी जी का आवाहन मंच पर करती हूँ। आप चेयरपर्सन हैं ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन भुवनेश्वर के, आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के रूप में कोरापुट जयपुर बरहमपुर पुरी गंजम में भी कार्य किया है। यू ऑल्सो सर्व्ड एज चेयरमैन सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल उड़ीसा कटक, यू बीन मेंबर सेक्रेटरी उड़ीसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कटक, यू सर्व्ड एज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कटक एंड देन ज्वाइंड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लॉ डिपार्टमेंट। You were elevated as additional judge of Orissa High Court in 2013 and took oath as permanent judge of Orissa High Court only in 2014. Then you were transferred to Madras High Court in 17 and repatriated again to Orissa High Court and joined as judge over there. Cicero ne kaha hai, the aim of justice is to give everyone his due. I now besiege upon stage Honorable Mr. Justice S. Pujahariji.
ओम शांति। आज के शुभ संध्या में हमारा जो स्पिरिचुअल पावर फॉर हेल्थ एंड लॉफुल सोसाइटी का जो सेमिनार हो रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में विश्वविद्यालय में, मेरा वक्तव्य रहने से आरंभ करने से पहले मैं शिव बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा वक्तव्य शुरू करता हूं। मंच पर उपस्थित चेयरपर्सन ब्रदर जस्टिस जिंदल प्रमोट जोजफ हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, सोहा में उपस्थित राजयोगिनी बी के कविता, चंडीगढ़ जो सीनियर राजयोग टीचर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जूरिस्ट विंग का, राजयोगिनी बी के जयंती इंदौर से जो आई हुई हैं, जो सीनियर राजयोग टीचर हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के भी, ब्रदर सुशील कुमार रस्तोगी जो कि जिला न्यायाधीश का हिसाब से अवसर लेने के बाद अभी डेप्टी रिकवरी ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजयोगिनी बी के लक्ष्मी हंस और नीलम पतंजीव सीनियर राजयोग टीचर एंड मेंबर जूरिस्ट विंग, राठी भाई जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उपस्थित नहीं हुए हैं। ये जूरिस्ट विंग तो 84 से शुरू हुआ, आज 40 साल हो गया ये निरंतर चलता है और इसका प्रचार और प्रसार बहुत जोर से हो रहा है। अभी तो सेंटर सेंटर में कंपटीशन हो गया है, हर स्टेट में लीगल ये जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस पहले तो माउंट आबू में होता था एक बार दो बार, अभी सब सेंटर में ये जूरिस्ट विंग का कॉन्फ्रेंस चलता है। इसमें बहुत न्यायाधीश वकील भाई और बहने न्याय के छात्र हैं और प्रजापिता से जड़े हुए ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार और राजयोगी सब यहाँ आते हैं, लेकिन माउंट आबू में इसका बहुत सारे महत्व है। यहाँ बहुत बहुत विभूतियाँ भारत के आते हैं और सबका महान विभूतियाँ आते हैं और यहाँ पर जूरिस्टिंग बराबर साल में तो एक बार जरूर होता है जूरिस्टिंग का, कभी दिसंबर में होता है, सितंबर में अभी हुआ है, ये साल चलता है, चलता रहता है। कोई अनुष्ठान तो शुरू कर देना बहुत आसान की बात है, लेकिन इसको निरंतर चलाना, 40 साल से निरंतर चलाना, ये बहुत इतना आसान चीज नहीं है। अगर आपका अंदर में इतना जुड़ाव नहीं रहेगा और इतना सेक्रीफाइसिंग नेचर नहीं रहेगा तो ये अनुष्ठान चलाना मुश्किल है। मेरे को तो पहले ही विश्वास था कि जब ब्रह्मा कुमारी विंग इसको शुरू किया है तो प्रोग्राम इसका निरंतर चलता रहेगा और ग्रेजुअली इसका जिस हिसाब से एक्सपांड हो रहा है और इसका माध्यम से जो कि न्याय का सेवा में जुड़े हुए लोग हैं और इनको जूरिस्ट्रिंग में जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बोला दिया जाता है जहां यहां का संस्पर्श में आके इन लोग जो कुछ ज्ञान लेके जाते हैं ये उनको बहुत समाज के सुधार में काम में आता है। मैं तो आज सोचा भी नहीं था कि मेरे को आज यहां आना पड़ेगा, पहले तो भी आए हैं लेकिन काल का था मेरा प्रोग्राम आज। फिर मेरे को आज भी नथवाल भाई ने जो कि हमारा उड़ीसा का सब कार्यक्रम देखते हैं और सब जगह में ऑल इंडिया जाते हैं, वे बाहर में भी जाते हैं, बोले कि नहीं सर 4 बजे पहुंचना है और आपको आज भी कुछ बोलना है। तो ठीक है, मैं बोलने के लिए तो आ गया, पहले भी तो आया हूं 2-4 बार यहां आया हूं। ये पंडाल में माउंट आबू में उधर पंडपबन में भी हुआ है, दूसरा जगह में अब रोड में हुआ है, यहां पर है मदुराई में, जाते हैं जहां पर भी बुलाते हैं हम जाते हैं। हम इसके बारे में क्या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में तो बोल दिए, जो अभी लक्ष्मीहंस जी बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म क्या है। स्पिरिचुअलिज्म कोई सोचता है घंटा भर पूजा करना, कोई धर्म को ये करना, ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। स्पिरिचुअलिज्म वही नहीं है। कोई भी आदमी पूजा पाठ नहीं करके अंतर से स्पिरिचुअल बन सकता है, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन गांव में क्या समझते हैं, ये वो बहुत आदमी है, बहुत संत आदमी है, पूजा पाठ करता है, घंटा भर पूजा पाठ करता है, कुछ को किसी को भी कष्ट नहीं देता है, बात जब से नहीं बोलता है, लेकिन उसका अंतरात्मा के अंदर क्या चलता है, वो क्या कितना काम करता है, क्या बुरा काम करता है, उसको नहीं देखते हैं। वो भाव बराबर देख के लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल आदमी नहीं है। लक्ष्मी जी ने बोल दिया राजयोगिनी ने, स्पिरिचुअलिज्म वही है जो अंतरात्मा से जो इसका शुद्धिकरण है वो स्पिरिचुअल आदमी उसको हम बोलेंगे। जैसे वैष्णव जन तो तेने कही हो जो पीड़ पड़ा ही जाने रे, जो दूसरों का कष्ट को समझता है, जो दूसरा आदमी का समझता है, दूसरा को पीड़ा को जानता है, वही ट्रू सेंस में स्पिरिचुअल है, उसको हम स्पिरिचुअल बोल सकते हैं। ये पूजा पाठ करेंगे इसमें हम कोई स्पिरिचुअल नहीं बनता है। घंटा भर पूजा करता है लेकिन पूजा के बाद एक घंटा में पूजा यहां करता रहेगा, मन दूसरा कहीं लगा हुआ है, ये तो छोड़िए स्पिरिचुअलिज्म के बाद में। स्पिरिचुअलिज्म से का माध्यम से इसका जुड़ा क्यों है, क्यों हम जूरिस्ट्रिंग में स्पिरिचुअलिज्म को लाते हैं। स्पिरिचुअलिज्म जूरिस्ट्रिंग में तो लॉजिक में जाते हैं, प्रूफ में जाते हैं, क्यों स्पिरिचुअलिज्म में। सब जूरिस्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ आदमी, ये जूरिस्ट लीगल प्रोसेस से जुड़ा हुआ आदमी को क्यों स्पिरिचुअल बनना चाहिए। सब तो है, देखिए ये ऐसे एक ब्रांच है जीवन का जो ह्यूमन प्रॉब्लम को डील करता है। सब लोग तो दूसरा प्रॉब्लम को डील करते हैं, इंजीनियर रोड बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई मशीन बनाता है, लेकिन ये एक प्रोफेशन है जो कि मनुष्य जीवन का ह्यूमन का प्रॉब्लम को डील करता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको अगर आप स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे, आप सिर्फ जो बोले हमारा रास्तोगी जी भी बोले, प्रूफ में तो हमको जाना है, अगर प्रूफ में हम नहीं जाएंगे तो बोल दे भी कि प्रूफ में अगर नहीं जाएंगे तो क्यों प्रूफ में जाने को हमको पड़ता है, क्यों हम तो सोच लेंगे कि नहीं ये मेरा हिसाब से भगवान ने मेरे को बोला है कि ये गलत आदमी है, इसको दंड दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जो भी है वो लॉजिक है। लॉजिक के साथ भी स्पिरिचुअल रहना इसीलिए चाहिए कि वो आपको स्थित प्रज्ञ है, वो लॉजिक को ठीक से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर पूर्वाग्रहित नहीं रहेंगे, जैसे रास्तोगी भाई बोले कि पूर्वाग्रहित नहीं रहेंगे, तो उसको आप ठीक हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूर्वाग्रहित रह जाएगा कोई आदमी, तो जितना लॉजिक को आप तोड़ मोड़ करके अप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, वो बहुत थोड़ा गलत आदमी थे, वो जजमेंट इतना ब्रिलियंट थे, वो जजमेंट किसी को खलास कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोलेगा ये ठीक राइट जजमेंट दिया है, किसी वही एविडेंस में वो किसी को कन्विक्शन भी कर देंगे तो बोला गया नहीं अरे जज इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे जजमेंट लिखा है, उसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग था लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं था। उसको यूज करता था वो वेपन उसका कैसे अपना स्वार्थ के हिसाब से कैसे यूज करेंगे, वो स्पिरिचुअलिज्म। अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो उससे आप पूर्वाग्रहित नहीं होंगे, आपका विवेक और जो प्रूफ है उसी का हिसाब से आप समाज में न्याय का, जो हम न्यायाधीश लोग हैं ये सब हम कर सकते हैं। और सिर्फ न्यायाधीश के बारे में जूरिस्ट का काम नहीं, आप वकील भी ठीक रहना चाहिए। वकीलों का अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो वही तो क्या हुआ ना, एक जज साहब हमारा थे, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मैं तो ज्यादा ये नहींता हूं, वो बोले एक आदमी आया, उसको बोला ये बोला एक आदमी बोला ये बोला ये मेरा वाइफ, वो बोला वो मेरा वाइफ है, वो बोला मैं उसका वाइफ हूं, दूसरा बोला नहीं सर मैं उसका वाइफ हूं, पूरा सब एग्जाम्पल दे दिए, सब एविडेंस, इधर भी एविडेंस प्रोड्यूस हो गया, उधर एविडेंस प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो स्पिरिचुअल आदमी थे, वो सब उसको बहुत भाव सोच के वो अच्छा से न्याय किए। तो उसको बोले वकील साहब को बोले दूसरा साहब का सर अरे ये तो ही, मेरे को लगा यही है, नहीं सर आप सही निर्णय किए हैं, क्या हुआ नहीं सिर्फ ये जो वाइफ था ना, शी वॉज बर्न इन द लॉयर्स टेबल एंड डाइड इन द लॉयर्स टेबल, वो नहीं था मैं, कागज सब बनवाट करके उसको मैं उसका वाइफ बोल के प्रूव करना चाहता था, लेकिन आपका जो है न्यायदान किए वो अच्छा से आप न्यायदान किए। हमारा एक क्रिमिनल जस्टिस में जस्टिस भट्ट बोल के थे, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर थे, केरल का है जस्टिस यूएल भट्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी है थे, वो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाए, वो बहुत सारा बहुत अच्छा जज थे वो, तो वो लेकिन न्यायविद थे, थोड़ा स्पिरिचुअल भी थे, तो अच्छा इन्वेस्टिगेटर भी, इन्वेस्टिगेशन किया था, सब एविडेंस आ गया, कन्विक्शन करना था, लेकिन उनका मन में थोड़ा आया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का था, वो खलास कर दिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना, जो आदमी को मर्डर हो गया था बोला वो जिंदा आ गया, तो बोले वो इन्वेस्टिगेटर को अरे तुम तो अच्छा इन्वेस्टिगेटर हो, ऐसा कैसे हुआ, तुमसे कैसे गलती हुआ, नहीं सर ह्यूमन माइंड है कभी कभी गलती कर देता है, इसीलिए आप अगर हरदम ठीक है प्रूफ है, फिर आपका अंतरात्मा अगर स्पिरिचुअल होगा तो अंतरात्मा से कोई एक आता है, आवाज आता है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है प्रूफ में हम जाना है, इसका मतलब नहीं कि सही गलत मेरा मनमानी है, कहीं वहीं बेविचारी आदमी बैठ जाएगा मैं जो जैसा बोलता था, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो सही बोलता हूं, वो जो सही नहीं है भी वो, इसीलिए आईन कानून सब बना हुआ है, लेकिन इसको ठीक से अप्लाई करने के लिए हम लोग को सब स्पिरिचुअल रहना है, स्पिरिचुअल बनना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो भी आता है ये क्यों ट्रेनिंग देते हैं, ये पशुत्व से हम बोले हैं यही एक बार भी पहले भी, मनुष्य के ओर मैन इज बाय नेचर सेल्फिश ब्रूटिश एंड इगोइस्टिक, जन्म से मनुष्य का प्रकृति यही है, पशु का प्रकृति जैसा था मनुष्य का भी प्रकृति है, लेकिन उसका मन में भी एक देवत्व का है, इसकी ओर आपको ऐसे अनुष्ठान लेता है। ये आप जितना भी अच्छा लव बनाए क्या होगा, अगर आदमी ठीक नहीं है तो उसका गलत इस्तेमाल होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो अच्छा आदमी बनना चाहिए, हम ह्यूमन प्रॉब्लम में डील करते हैं, अगर हम इसी को सही ढंग से हमारा स्पिरिचुअलिटी रहेगा, मन ठीक रहेगा, स्पिरिचुअल रहेंगे तो उसको अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं, अडल्ली सोसाइटी होगा, लगन नहीं रहेगा तो एनआरके होगा, फिर जंगल राज की ओर चले जाएंगे। जंगल राज से हम आए क्यों आए इधर? जंगल राज से हम तो चलते थे, पुराने हमारा पूर्वजों जंगल राज में ऐसे चलते थे, वहीं से हम अडल्ली सोसाइटी कैसे आए? आइन को मानेंगे, इसको मानेंगे, ये मानेंगे, ऐसे करके। अगर उसको हम फिर अगर उसको सही ढंग से नहीं करेंगे, जो जैसे बोलते हैं, पहले बोलते हैं अभी बहुत बढ़ गया है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीड अभी ज्यादा हो गया है। आप अगर स्पिरिचुअल होंगे तो ग्रीड आपका कमती होता जाएगा, लेकिन आदमी ग्रीडी हो जाएगा तो ये ग्रीड के लिए बहुत होता है। ग्रीड, जितना पैसा है यार, और कितना पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पावर चाहिए। ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर सेटिस्फाइड, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट, ये गांधी जी ने जैसे बोला था। हम अगर स्पिरिचुअल रहेंगे तो हम जानते हैं कि ये ठीक है, वी आर गेस्ट हियर फॉर सम टाइम्स, हमको इतना चाहिए, ये तो हो गया, भगवान की कृपा से बहुत हो गया, हम अभी अब नहीं चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब कंट्रोल करेगा, नहीं तो ग्रीड बढ़ेगा, और ग्रीड के लिए ये सब होता है। ग्रीड हैज एनवलप्ड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। आप जो भी है अभी क्या है, सब ग्रीड के लिए सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ग्रीड जैसे कमेगा आपका मन, अब ग्रीड कब कमेगा, आप जब हार्ट में स्पिरिचुअल बनेंगे, स्पिरिचुअल बनने से ग्रीड का कमती होता जाएगा, और ग्रीड कमती होने से अडल्ली सोसाइटी रहेगा, हेल्दी सोसाइटी रहेगा। तो स्पिरिचुअलिज्म इसीलिए जरूरत है, और हम लोग सब ह्यूमन प्रॉब्लम से डील करते हैं तो हमारे लिए स्पिरिचुअलिज्म काफी जरूरत है। और कुछ मेरे के पास बोलने का लिए नहीं है, मैं प्रस्तुत भी नहीं था, मैं आया, मेरे को तुरंत 4:30 बजे आया, मेरे को नाथमल भाई ने बोला आपको आज भी बैठना है, मैंने ठीक है आपका जैसे आदेश है। मैं तो ये अनुष्ठान से 2003 से जब जैन किया उससे जुड़ा हुआ हूँ, सबको जानता हूँ, यहाँ बार बार भी आता हूँ, और मैं आभार प्रकट करता हूँ इस बार भी मेरे को बुलाए, इसलिए मैं अनुष्ठान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका जो कल अभी हुआ है ये तो बढ़ता जाएगा ही, अनुष्ठान बढ़ता जाएगा, इसमें बहुत आदमी जुड़ते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कितना जुड़ा होता है, अनुष्ठान का कैसा ग्रोथ होता है, क्योंकि ये धर्म जाति कोई स्पिरिचुअलिज्म इसमें कोई रिचुअल्स इसमें विश्वास नहीं करता है। जो जो धर्म का हो इसमें के मनुष्यत्व के ओर सिर्फ ये अनुष्ठान आपको सिखाता है आप कैसे अच्छा आदमी बने, कैसे समाज का सेवा करें। इसलिए एवरी सीन एवरी सेज हैज ए सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सीनर हैज ए फ्यूचर, यही स्पिरिट से काम करता है। जेल के बहने जाते थे, हम तो डिस्ट्रिक्ट थे उड़ीसा में, उसका बहुत प्रसार है, हम लोग जाते थे जेल में, इन लोग जाते हैं जेल में, विजिट करते हैं, कन्विक्ट लोग को रिफंड करते हैं। इसीलिए ये अनुष्ठान इसका ग्रोथ होता है और ग्रोथ होता रहेगा, ये मेरा बहुत विश्वास है। इतना शुभकामनाएं रख के मैं मेरा वक्तव्य को खत्म करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम बहुत बहुत कहें तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपने आते ही चिरागों को रोशनी दे दी, वे नसीब जो जर्रों को आफ्ताब किया है, शुक्रगुजार हम सब इस जलवा नुमाई के, चांदनी दे के सितारों को मेहताब किया। आपने कहा कि अच्छा आदमी बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टू बी इम्पॉर्टेंट इज गुड बट टू बी गुड इज मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं कृपया सुन लेंगे। अभी इस रिसेप्शन सेशन में ही वक्तव्य समाप्त होने के बाद में सभी को ईश्वरीय सौगात दी जाएगी, तो कृपया वो अवश्य लें। साथ ही ये फोल्डर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को मिले हैं, जिन्होंने अभी तक भी प्राप्त न किया हो वो कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे ही कॉन्फ्रेंस ऑफिस है, वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
हॉल के एग्जिट डोर्स के दोनों तरफ इस तरह का आपको एक कोड क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे आप ज्यूरिस्ट विंग से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मेल पर, वेबसाइट पर, लिंक्डइन पर। तो आप जरूर ज्यूरिस्ट विंग के कार्यक्रमों से जुड़ें, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें तो हो गई, चलिए थोड़ी देर इस स्पिरिचुअलिटी का हम प्रैक्टिकल अनुभव भी कर लेते हैं। हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी जयंती दीदी जी, सॉरी नीलम दीदी जी पाटन से पधारे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में बचपन से ही आए, 1973 से आप इस इंस्टीट्यूशन में समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। पांडव भवन नई दिल्ली अजमेर महसाना से होते हुए 1978 से आपने पाटन सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला और आपके कुशल नेतृत्व में दो सेवा केंद्र, दो सेवा केंद्र और लगभग 112 पाठशालाएं चल रही हैं। आपसे प्रेरित होकर लगभग 40 कुमारियों ने अपना जीवन बहुत उच्च बनाया है और प्रभु को समर्पित किया है। तो मैं अब मंच पर आवाहन करती हूँ हम सभी को थोड़ा सा साइलेंस राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिकल अनुभव कराने के लिए। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दीदी जी का, दीदी नीलम दीदी जी का हम करतल ध्वनि के साथ आवाहन करेंगे।
ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। मंच पर विराजमान सर्व महानुभाव और राजयोगिनी बहनें और आप सभी जो सभा में बैठे हुए हैं,
ना
ओम शांति। सभा में बैठे हुए सर्व भाई बहनें, आप बहुत समय से आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुन रहे थे और साथ साथ आप सभी ने ये भी सुना कि मेडिटेशन से ये आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जैसे हम दो तारों का कनेक्शन जोड़ना हो तो ऊपर से रबर उतारना पड़ेगा, तभी हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम अपने घर में हर प्रकार की फैसिलिटी करते हैं, टीवी, फ्रिज, सब चीजें लाने के लिए स्विच आदि सब लगा देते हैं, परंतु जब तक हम पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं तब तक उसमें लाइट नहीं आती। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें कीटाणुओं को, बीमारियों को दूर करती है, रोशनी देती है, और अगर हम सूर्य की किरणों को बिलोरी कांच के ऊपर केंद्रित करें तो नीचे रखा हुआ कागज जल जाएगा। ऐसे आप कागज को 20 साल तक भी रखो तो कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से ये सहज राज योग जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है उसके साथ संबंध जोड़ने से जो सर्व गुणों के सागर भंडार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे पिता परमात्मा से अगर हम अपना संबंध जोड़ेंगे तो अवश्य हम अपने जीवन के अंदर भी और ये देह रूपी जो वस्त्र है, देह का अभिमान है, जब तक हम उसको भूलने का प्रयत्न नहीं करेंगे और अपने को एक चैतन्य शक्ति आत्मा समझेंगे तब ही हमारा उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जुटेगा और उसके द्वारा हमें अनेक प्रकार की शक्तियां, गुण, वैल्यूज जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो सब प्राप्त होंगी। तो उसके लिए मैं कुछ क्षणों के लिए आप सभी इसका अनुभव करेंगे और थोड़ा सा सीधा होकर के सभी बैठें और रिलैक्स हो जाएं और चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने भ्रिकुटी के बीच में जो एक चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान है उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और साथ साथ जो मैं आपको सुनाती जाऊं उन शब्दों को भी आप अपने अंदर लेकर के जाएंगे, अनुभव करेंगे, तो अवश्य ये जो अनुभव है वो आप अपने साथ भी ले जाएंगे। सवेरे शाम समय निकाल करके 5-10 मिनट भी अगर इस अभ्यास को आप करते रहेंगे तो अवश्य, कहते हैं वकील माना विकारों को किल करने वाला, खत्म करने वाला, जज जैसे अपने निर्णय को शक्ति उसके अंदर होती है, परंतु इस राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा क्विक और राइट निर्णय हम ले सकते हैं। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कई बातें सुनाई तो हम सभी कुछ क्षणों के लिए अपने आप को रिलैक्स करके और जैसे जैसे मैं आपको संकल्प देती जाऊं ऐसे आप अवश्य उसका अनुभव करेंगे कुछ क्षणों के लिए। मैं एक चैतन्य शक्ति इस भ्रिकुटी के बीच निवास करने वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, इन कर्म इंद्रियों की मालिक राजा हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर ये देह रूपी वस्त्र धारण करके भिन्न नाम रूप देश काल अलग अलग पार्ट बजाती आई हूं। वास्तव में मेरा असली घर सूर्य चांद सितारों से पार, जिसे ब्रह्म मह तत्व भी कहते हैं, परम धाम, शांति धाम, उस लोक की मैं रहने वाली हूं। वहां से सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आई हूं, फिर वापिस मुझे उस ज्योति के देश में लौटना है जहां मेरा असली घर है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, एकदम निर्संकल्प अवस्था है। जैसी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, वैसी मेरे परम पिता परमात्मा शिव जो कल्याणकारी हैं, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप गुणों के सिंधु सागर हैं। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूं। पिता परमात्मा मेरे सच्चे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, सखा हैं। मैं उस पिता की संतान, पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूं। मेरे द्वारा शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरे वातावरण को आनंदित कर रही है। पिता परमात्मा प्रेम के सागर हैं। मैं उस पिता की संतान प्रेम स्वरूप हूँ। उस प्यार की किरणी, उस परमात्मा का जो प्यार है, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, हम सब आत्माओं को उस पिता परमात्मा की ओर आकर्षित कर रहा है। मैं आत्मा चुंबक के समान उस ओर आकर्षित होती चली जा रही हूँ। परमात्मा पवित्रता के सागर है, मैं आत्मा भी अपने असली स्वरूप स्वधर्म, मेरा भी पवित्र स्वरूप है। पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे द्वारा इस पूरे हॉल में फैल रही हैं। इस बात का मैं स्वयं अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूँ। वो सर्व गुणों शक्तियों के भंडार हैं, मुझ आत्मा पर भी उनकी सर्व शक्तियाँ सर्व गुण मुझ आत्मा में भरते जा रही हैं। और मैं आत्मा स्वयं को धन्य धन्य समझ रही हूँ। उस पिता की संतान होने के नाते मैं अपने को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं जिसे परमात्मा प्राप्ति हो। उस परमात्मा से जो चाहिए वो सर्व मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। मैं उस पिता से मेरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति, वो सब प्राप्त करती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ, खुश नसीब। मेरे जीवन में हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, ये सब दिव्य गुण मुझ आत्मा में आते जा रहे हैं। और मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच में मैं कौन, मैं इस ब्रिकुटी में निवास करने वाली एक चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और मेरा इन कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मैं जैसे चाहूं इंद्रियों से कार्य ले सकती हूं। इतनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर इस अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। मैं चाहूं तो ये मुख बोले, नहीं तो शांत रीति से और हरि के साथ व्यवहार में आए। इस प्रकार का अनुभव अवश्य आप सभी कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस अपने साकार शरीर में अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंच कर ये अनुभव अवश्य मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी। तो जरूर जैसा कि आपने सुना, अनेक प्रकार की जो बीमारियां, रोग, शोक, दुख, अशांति, इन सब से हम बिना मेहनत के इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सहज प्राप्त कर सकते हैं, जो हम सभी भाई बहने जो आप देख रहे हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के अभ्यास द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों पर हम सहज रीति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरा स्वयं का भी अनुभव है। 20 साल पहले मुझे कैंसर हुआ, ऑपरेशन कराया, उसके बाद तपस्या के द्वारा इस जीवन को प्राप्त किया है। आप सभी भी अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, अनुभव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति की इस गहरी अनुभूति के बाद वाचा में आने का मन तो नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा को तो आगे बढ़ाना ही होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, आपके सामने राजयोग मेडिटेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खड़ा है। कैसे 20 साल पहले इन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की, तो हम जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नीलम दीदी जी का इस्तकबाल करते हैं। अभी समय तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा धीरज और धरें, क्योंकि ये समय है हमारे इस सेशन के चेयरपर्सन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एएन सिंह जिंदल जी को सुनने का। आप फॉर्मर जज हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ से पधारे हैं। आपका बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास बायोडेटा आया है, लेकिन गागर में सागर को समाते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं अपने लीगल करियर की। 1974 में आपने स्टार्ट किया, तो जरूर हम जोरदार तालियां
आदरणीय भाई साहब जी के लिए करेंगे। और मई 2013 में सुपर एनुएशन के बाद आपने अपना सेवाओं का कार्य जारी रखा है। यू हैव सर्व्ड एज चेयरमैन वैट ट्रिब्यूनल पंजाब। यू हैव कंडक्टेड न्यूमरस केसेस अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। प्रेजेंटली यू आर द मेंबर ऑफ हरियाणा एंटी नारकोटिक्स कमेटी, मेंबर ऑफ नया चौपाल फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इन हरियाणा। आप इंक्वायरी ऑफिसर भी हैं पंजाब में, जो क्लास वन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में इंक्वायरीज शुरू होती हैं। आप रमा कुमारी के संपर्क में 1989-90 से आए हैं और उसके बाद लगातार आप किसी न किसी कॉन्फ्रेंस से माउंट आबू भी विजिट करते रहे हैं। एंड यू ऑलवेज एम्ड टू प्रोवाइड ऑनेस्ट, क्लीन एंड स्पीडी जस्टिस टू ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिचेस और पॉवर्टी। तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए एन जिंदल जी। वी वुड लाइक टू हियर यू आउट।
दूरी रखो, मैं तो थोड़ा दूर। ओम शांति, ओम शांति। बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से आए हुए मेरे रिस्पेक्टेड बहनों और भाइयों, मैं आपका यहाँ पर आने का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लंबे सफर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको ठीक जगह मिल गई होगी और आपको खाना भी अच्छी तरह मिल गया होगा। मिला खाना, जगह मिली? तो आप घर तो भूल गए हो यहाँ? आप तीन दिन के लिए यहाँ पर अध्यात्म ही सीखेंगे। क्या अध्यात्म क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी ये कैसे पाया जाता है और इसकी क्या आप इम्पोर्टेंस समझते हैं? तो मैं इस बात का हामी हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है सारे हिंदुस्तान के कोने कोने पर फैली हुई है, तो ये और हिंदुस्तान में ही नहीं 140 कंट्रीज में इसका फैलाव है। ये सारा अध्यात्म स्प्रेड करने के लिए ही बहने आई गई हुई हैं और हर गली गली कूचे में जाके अध्यात्म का ही प्रचार करते हैं। तो अध्यात्म हम देखते हैं कि लॉर्ड शिवा ने वो हम हिंदुस्तानियों को और हम संसारिक जीवों को अध्यात्म देने के लिए ही यहाँ पैदा किया है, और कोई इसका कारण नहीं है कि हमें कोई पाप करने के लिए यहाँ भेजा है। अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो ब्रूटैलिटी आएगी, इनह्यूमैनिटी आएगी, तो किसी को क्वायस हो जाएगा। तो इसलिए इस धरती पर चाहे सोशल बींग हो, चाहे पॉलिटिकल बींग हो, चाहे कमर्शियल बींग हो, चाहे इकोनॉमिक बींग हो, अध्यात्म का होना जरूरी है। अगर अध्यात्म का ना होगा तो आदमी आदमी को काटेगा। तो ये आज की बात नहीं है, इसको बहुत शुरू से ही जब से मनुष्य धरती पर आया है अध्यात्म की जरूरत रही है। तो भगवान ने आप देखिए भगवान अपने स्पिरिचुअल पावर सारे संसार को दे रहा है, इसको क्यों नहीं पा पाते? क्या समस्या है कि हम क्या प्रॉब्लम क्या है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज हम वकील भाई हैं लोगों को, आप हम अपने दुख उनके अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उनके लिए झगड़ते हैं। किसी के बहन का झगड़ा है, किसी के भाई का झगड़ा है, किसी की बेटी की समस्या है, तो उसमें हम उलझे रहते हैं और हमारे बच्चों की भी समस्या होती है। तो हम अपने लिए कुछ भी कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? हम उस तरफ सोचते ही नहीं है, तो हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। मगर ये तो ठीक है कि हम लोगों की समस्या के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम क्यों नहीं कर पाते? हमारी जिंदगी हमेशा भावनाएं और तनाव में भरी रहती है और हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये बात सोच भी नहीं पाते, तो हमें परेशानियां तंग करती हैं, तो हमें सोचना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने ब्रेन को डिफरेंट तरीके से सोचें, अपने लिए सोचें, अपने लिए भी कुछ क्षण अपने लिए निकालें, ताकि इस धरती पर कोई न कोई हम इसके अलावा की अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर भी हम लोगों का कल्याण कर सकें। और ये हम ये तभी हो पॉसिबल पाएगा कि हम जिनकी शुरुआत भगवान के नाम पर करें, हम सोचें कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं इस धरती पर आया हूँ तो मैं कल्याणकारी कामों के लिए आया हूँ, तो इसलिए ये जरूरी बन गया है, तो भगवान का ग्रेटिट्यूड भी करें हम कि भगवान ने मुझे भेजा है, उसका मेहरबानी है, मुझे जन्म दिया है उसकी मेहरबानी है, मैं इसके वकील बना या मैं प्रोफेशनल बना उसकी मेहरबानी है, हम उसने मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया उसकी मेहरबानी है, हम ये बातों का भगवान का ग्रेटिट्यूड करें तो भगवान, और उसके बाद इसको अब ये हम आला दौला देखें, हमारे दोस्तों को देखें, जो बड़े लोग हैं उनको भी देखें, ताकि हमें पता चले कि उनमें क्या क्वालिटीज हैं, हम उनकी क्वालिटीज कुछ धारण करें, ताकि हमें भी समझ आए कि हम भी ऐसे आदमी बन सकें जो कि लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो कि रामचंद्र जी महाराज, महावीर जी, गुरु नानक देव जी, तो ब्रह्मा बाबा जी, क्राइस्ट और सभी, इन्होंने भी तो ये अध्यात्म के लिए यहाँ फला किया, अध्यात्म का प्रचार किया, तो उन लोगों को सीधे रास्ते पर डाला, तो हम इन लोगों से भी शिक्षा लेके अपने आप को सुधारें। एक प्रॉब्लम हमारे बीच में क्या है कि हम अपने दिमाग, हम अपनी बीमारियां जो हैं वो बीमारियां हम दवाई से ठीक कर लेते हैं, पेट की बीमारियां हैं या जो भी शरीर की बीमारियां हैं, मगर हम दिमाग की बीमारी ठीक नहीं कर पाते। क्या समस्या है दिमाग की बीमारी का? यह समस्या ये है कि हम दिमाग में अपना कूड़ा कचरा भर के रखते हैं, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हमें बहुत सारे दुखी लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे गलत लोग भी मिलते हैं और उनकी वाइब्रेशन भी ठीक नहीं आती, तो हमारे दिमाग में गुस्सा, बैड थॉट्स, हम नर्वस रहते हैं, बहम पड़ा रहता है, या लालची हो जाते हैं और हमें जेलसी होती है या ईगो होती है, हमें चिंता लगी रहती है, हम दुश्मनी पाल लेते हैं या हमें टेंशन लगी रहती है, ये बीमारियां हमें दिमाग हमें ये खाती रहती हैं, तो इसका उल्ट क्या होता है कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, इस दिमाग में आता ही नहीं है, तो इसको ये तब निकलेगा, ये चीज बातें तब खत्म होगी, तब आप दिमाग को खाली कर पाएंगे अगर आप रोज कोई मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, आप उसको बैठकर अपने मन को शांत करके, जैसे अभी आपको मेडिटेशन बताया है, इसको शांत करके मेडिटेशन करें, धीरे धीरे उसके साथ कंसंट्रेट करें अपने आप को, तो ये आप भगवान को, आपको ये अध्यात्म पाने का बहुत सबसे अच्छा तरीका है। मेडिटेशन से सुख समृद्धि, सेहत और सफलता आएगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, अभी भी वक्त है आपके पास, अगर इसका फायदा उठाओ, और मटेरियल वर्ल्ड से नहीं निकलोगे तो वक्त निकल जाएगा, फिर वक्त हाथ नहीं आएगा तो आप पछताओगे। ये धन दौलत जिनके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो वो भी आपके साथ काम नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपके साथ सिर्फ आपके कर्म या आपकी याद या आपका अध्यात्म जाएगा, और आप धन से उलझे रहोगे तो जीवन संवार नहीं पाओगे, फिर उसको आप क्या हिसाब दोगे जब उस भगवान के पास जाओगे। तो मैं समय के बारे में एक चंद लाइनें कहूंगा। अभी हाथ हाथों से छूटे नहीं हैं, अभी रोक लो तो ठहर जाऊंगा मैं। कहाँ ढूंढोगे फिर, कहाँ फिर मैं मिलूंगा। अगर भक्त बन के गुजर जाऊंगा मैं। ढूंढने चले थे उस खुदा को, पता नहीं था कि वो तो आपके घर में ही है। अपना अंदर टटोलोगे, करोगे मन से याद, तो साथ आपके नजर आऊंगा मैं। तो ऐसी बातें चंद कह के मैं आप ये अपना टाइम टाइट हो गया है, जैसे बहन जी ने पहले ही कहा है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके ये जो है अध्यात्म बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में बहुत कुछ, बहुत किताबें लिखी गई हैं। ये बहुत बीमारियों का इलाज भी है, सिर्फ अध्यात्म से ही बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। बहुत एग्जाम्पल्स आपके सामने है, जैसे बहन जी ने बताया। तो मैं इतना कह के चंद लफ्जों से मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और आपने एक इशारा दिया है, हमारा ध्यान खिंचवाया है कि हम सब यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए अवश्य हैं, लेकिन स्व पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक्स देंगे। अभी सबसे अच्छे पाठ की तरफ हम बढ़ेंगे। ये समय है ईश्वरीय सौगात का, तो इस तरह से व्यवस्था रहेगी कि मंच के दाहिने और बाएं ओर से, दोनों ओर से एक लाइन में आप सभी आएंगे और दो तरफ से आपको सौगातें दी जाएंगी, जिससे समय कम लगेगा। टोली प्रसाद भी रहेगा और वरदानों का एक कार्ड भी रहेगा आपके लिए। स्लोगन आपके लिए, दो तरह के गिफ्ट्स हैं, एक डायरी पेन है और एक लक्ष्मी नारायण का चित्र है। दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। तो ये व्यवस्था अभी मंच पर बनाई जा रही है। उस बीच में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो जिनका ऊपर आपका ध्यान मैं लाना चाहूंगी। आपका जो सवेरे मेडिटेशन का एक बहुत उम्दा क्लास कहूंगी, ये एक्सपीरियंस कहूंगी, वो सवेरे 4:30 से 5 बजे तक इसी हॉल में रहेगा। सवेरे 6:30 से 6:30 तक फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी इसी हॉल में आपको करवाई जाएंगी। 6:30 बजे से बहुत सुंदर राजयोग शिविर के सेशंस रहेंगे रोज। आपसे गुजारिश है, कृपया इन्हें किसी भी कीमत पर मिस ना कीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन के टाइम में कुछ बैजेस दिए गए हैं, आप जरूर इन्हें पूरे टाइम पहन कर रखेंगे टू एंजॉय एक्सेस टू ऑल दी फैसिलिटीज, सो दैट नोबडी हिंडर्स दैट। एंड यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू फॉलो द टाइम टेबल। प्लीज कम इन द क्लासेस ऑन टाइम एंड रेडी विद अ डायरी एंड अ पेन, बिकॉज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां से पता चलने वाली हैं। Arrangements for tea and food have been made in the big dining hall on the first floor. तो जो बड़ा dining hall है उसके first floor पर विशेष jurist conference में पधारे हुए सभी delegates के लिए arrangement किया गया है। कुछ yellow badges, yellow strings वाले badges, वो हमारे esteemed guest judges and all को दिया गया है। उनके लिए भोजन की व्यवस्था छोटे डाइनिंग हॉल संतुष्ट मणि के सेकंड फ्लोर पर की गई है, आप वहां जरूर लेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल्स प्लीज, और अगर कहीं कोई चीज खो जाती है तो डायमंड हॉल के भाइयों की तरफ लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया विभाग है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत सारी बुक्स जर्नल्स पब्लिश्ड हैं, आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो लिटरेचर डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। आज ही आपको जल बचाओ अभियान के तहत एक बहुत सुंदर फिल्म वीडियो की दिखाई गई थी। आप सबसे निवेदन रहेगा कि बिजली पानी अवश्य बचाएं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है, हम जानते हैं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मदद चाहिए तो एवर हेल्दी हॉस्पिटल से आप संपर्क कर सकते हैं, इसी प्रांगण में वो मौजूद है। ज्यूरिस्ट विंग का ऑफिस वो टेलीफोन एक्सचेंज के और टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है। आप वहां पर नेशनल हेडक्वार्टर्स या हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफिस इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे है, जहां से आप अपने रजिस्ट्रेशन के फोल्डर्स प्राप्त कर सकते हैं। सारे कार्यक्रम आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में ही होंगे, मेडिटेशन भी यहां पर ही होंगे। आपसे तहे दिल से गुजारिश है, आप एक बहुत पवित्र स्थान पर आए हैं, अपने जीवन को आश्रम बनाने के लिए आए हैं, तो इस आश्रम की पवित्रता को कृपया बनाए रखें। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, मद्यपान या कोई भी तरह का ड्रग्स कृपया न सेवन करें। अगर किसी की किसी भी प्रकार के कल्चरल एक्टिविटी में रुचि है, सॉन्ग्स, पोएट्री, ड्रामा या इंटरव्यूज, तो शांति वन में ही रेडियो मधुबन 107.8 FM का स्टूडियो है, वहां पर आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। और हर सेशन आपका YouTube पर जाएगा लाइव, ये सेशन भी जा रहा है, तो आप अपने संबंध संपर्क वाले साथियों को अपने अपने स्थानों पर सूचित कर सकते हैं, ताकि वो घर बैठे इन सेशंस का आनंद ले सके। जब आप संडे को या मंडे को माउंट आबू दर्शन या आबू दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो जहां आपको अकोमोडेशन मिला था वहां जाकर के आप आबू दर्शन के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम ईश्वरीय सौगात की ओर बढ़ें, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस सेशन से हमें जो मिला वो यही था कि जब बुद्धि में स्वाध्याय होगा, जब मन में सत्य न्याय होगा, जब संस्कार स्वस्थ होंगे, संकल्प सुसंस्कृत सभ्य होंगे, जहां दिव्यता मुस्काएगी, आध्यात्मिक शक्तियां हर्षाएंगी, सद्गुण महकेंगे महकाएंगे, हम मिलकर ऐसा समाज बनाएंगे, जरूर हम मिलकर ऐसा समाज बनाएंगे। आप सभी के पेशेंट हियरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब अपने लिए और मंचा से इन महानुभावों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। एक मिनट के लिए अभी हम सब शांति में बैठेंगे, उसके पश्चात ही गॉडली गिफ्ट्स का वितरण होगा। हमारे मंचस्थीन ब्रह्मा कुमारी दीदियां आज हमको अपने शुभ हस्तों से ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगी, टोली प्रसाद प्रदान करेंगी। हम सब इन तपस्वी मूर्त आत्माओं से, उनकी नजरों से निहाल भी होंगे। बहुत शांति में आप सभी अपने स्थान से धीरे उठेंगे और मंच के दोनों ओर लाइन से कृपया अपने फुटवेयर बाहर ही उतार के आएंगे। इस बीच हमारे मंचासीन जो गेस्ट्स हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं। हम तालियों की गड़गड़ाहट से उन सभी का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं।